आर्यांश बिजनेस ट्रिप के चलते ऑस्ट्रेलिया गया हुआ था। उसके पीछे दीवा अकेली थी। आर्यांश ने दीवा के लिए सुमन माँ की तरह एक औरत को भेजा था जो उसकी देखभाल करने वाली थी। दीवा हॉस्पिटल में अपना काम कर रही थी कि तभी उसकी कजिन सिस्टर की स्कूल से कॉल आया। उसकी कजिन सिस्टर इनाया ने गुस्से में अपने क्लासमेट के साथ मारपीट की थी। दीवा जब उसे समझाने गई और उसे पूरा मामला पता चला तो दीवा ने इनाया को डांटने के बजाय उसके काम के लिए शाबाशी दी। दीवा और इनाया की बातों का फायदा उठाते हुए वो लड़की जिसको इनाया ने मारा था, उसने रोते हुए उसकी शिकायत क्लास टीचर से लगा दी ताकि वो इनाया को स्कूल से निकलवा सके। दीवा यहाँ इनाया की मदद करने आई थी, लेकिन उसकी वजह से अब इनाया के लिए नई मुसीबत खड़ी हो गई थी। दीवा ने अपनी आंखें कस के बंद कर ली। इस बीच में लड़की रोते हुए क्लास टीचर के पास बढ़ते हुए बोली, अब तो आपके सामने सच आ गया है ना सर, उम्मीद है कि आप सही से एक्शन लेंगे। बस भी करो जन्नत, ये सब तुमने ही शुरू किया था। तुम चुपचाप हो जाओ, इनाया से माफ़ी मांगो और बात को ख़त्म करो। उनके क्लास टीचर मिस्टर समय अरोरा ने उल्टा उसे ही डांटा। दीवा को उसकी आवाज़ जानी पहचानी लगी। उसने पलट कर देखा तो वो शक्ल भी जानी पहचानी थी। दीवा ने अपने दिमाग पर जोर दिया तो उसे याद आया कि वो उनका पड़ोसी था और साथ में वे एक ही स्कूल में भी पढ़ते थे। दीवा ने समय की तरफ देखा तो वो हल्का सा मुस्कुराया। समय ने भी दीवा को पहचान लिया था, या शायद पहले ही उसे अपनी तरफ आता हुआ देख लिया था। दीवा की तरफ एक छोटी सी स्माइल पास करने के बाद समय ने फिर से जन्नत की तरफ देखा और सख्त लहजे में कहा, मैंने पूरे मामले की छानबीन की है और कैमरा फुटेज भी देखी है। तुम और तुम्हारी फ्रेंड इनाया को उकसा रही थी, उसे भला बुरा कह रही थी, इस वजह से उसने ये सब किया। इनाया को अपनी गलती का एहसास होने पर उसने तुम्हें सॉरी लेटर भी लिखा था, लेकिन तुमने उसका भी मजाक उड़ाया। तुम कल असेंबली में सबके सामने उससे माफी मांगोगी और एक सॉरी लेटर दोगी। वैसे भी इनाया स्टडी में अच्छी थी और अपनी क्लास की मॉनिटर भी थी, सारे टीचर्स उसे पसंद करते थे। तभी समय ने पूरे मामले की छानबीन की और सच का पता लगाया। मामला जन्नत के ऊपर आ जाएगा उसने सोचा नहीं था। एक तो इनाया ने उसे थप्पड़ मारा था और इसके सामने इंसल्ट हुई थी, ऊपर से कल उसे सबके सामने इनाया से सॉरी भी कहना था। जन्नत ने रोते हुए कहा, आप मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं सर, इसमें मेरी कोई गलती नहीं थी, उसने मुझे थप्पड़ मारा था। तो तुम क्या चाहती हो, तुम भी बदले में उसे थप्पड़ मारोगी जबकि गलती तुम्हारी थी, समय ने सख्ती से कहा। सर आप पार्शियलिटी कर रहे हैं, जन्नत ने कहा। हाँ पार्शियलिटी तो कर रहा हूँ, तभी मामला तुम्हारा क्लास टीचर होने की वजह से मैं तुमसे ज्यादा कुछ नहीं करवा रहा। अगर तुमने बात बढ़ाई और फिर से मामले की जांच हुई तो तुम ही दोषी पाई जाओगी और तुम्हें फिर स्कूल से निकाल दिया जाएगा, समय ने जवाब दिया। समय ने काफी अच्छे से मामले को हैंडल किया था, जन्नत भी आगे कुछ कह नहीं पाई। दीवा का मन कर रहा था कि वो समय की इस बुद्धिमानी के लिए सराहना करे, पर इतने लोगों के सामने वो कुछ रिएक्ट भी नहीं कर सकती थी। मामला खत्म हो जाने के बाद समय और दीवा बाहर इनाया के साथ थे। समय ने उनकी हेल्प की थी तो दीवा ने उसके सामने ऑफर रखते हुए कहा, चलो ना कहीं बाहर लंच के लिए चलते हैं। हाँ क्यों नहीं, समय ने तुरंत एक्सेप्ट कर लिया था। कुछ ही देर में वे तीनों गाड़ी में थे। इनाया पीछे की सीट पर बैठी हुई थी जबकि समय के साथ दीवा आगे की सीट पर थी। दीवा ने चहकते हुए कहा, मुझे नहीं पता था कि तुम इनाया के क्लास टीचर हो, इसने पहले काफी बार तारीफ की थी कि इसके क्लास टीचर काफी हैंडसम और अच्छे हैं, आज मिले तो पता चला कि ये सही कह रही थी। थैंक यू सो मच समय, तुमने सच में काफी अच्छे से सब कुछ हैंडल किया। दीवा की बातें सुनकर इनाया को समझ आ गया था कि समय दीवा को पहले से जानता था, इस वजह से शायद उसने उसका साथ दिया था। उसने बीच में कुछ नहीं कहा और चुपचाप उनकी बातें सुनने लगी। इट्स ओके, ये काफी ब्रिलियंट स्टूडेंट है और मुझे पता था कि ये बेवजह किसी पर हाथ नहीं उठाएगी, इसे छोड़ो। ये बताओ कि तुम कैसी हो, हम एक लंबे वक्त के बाद मिल रहे हैं, समय ने गाड़ी ड्राइव करते हुए पूछा। मैं ठीक हूँ, देवा ने मुस्कुराकर कहा, हालांकि वो मन ही मन अच्छे से जानती थी कि वो कितनी ठीक है। अच्छा आजकल कहाँ काम कर रही हो, समय ने पूछा। लाइफ केयर हॉस्पिटल में, देवा ने धीरे से जवाब दिया। अच्छा तो तुम डॉक्टर बन ही गई, समय ने सिर हिलाकर कहा, मानो वो पहले से जानता था कि दीवा डॉक्टर बनना चाहती थी। लेकिन तुम्हें कैसे पता कि मैं डॉक्टर हूँ या नर्स, मैं नर्स भी तो हो सकती हूँ, दीवा ने हल्के मजाकिया अंदाज में पूछा। नहीं तुम एक डॉक्टर ही बनी होगी, वो भी एक काबिल डॉक्टर, तुम स्कूल टाइम में बहुत अच्छी थी, तुमने शायद ध्यान नहीं दिया, वॉल ऑफ फेम पर अभी भी तुम्हारी तस्वीर लगी है, समय बोला। दीवा बस मुस्कुरा कर रह गई। कुछ ही देर में वे एक रेस्टोरेंट में पहुंचे और वहां साथ में खाना खाया। दीवा इनाया के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करना चाहती थी इसलिए उसने समय को जाने दिया। उन दोनों ने एक दूसरे के नंबर एक्सचेंज कर लिए थे, वो इनाया के साथ स्कूल की तरफ बढ़ रही थी। इनाया ने एक नज़र दीवा की तरफ देखा और फिर अचानक कहा, क्या हुआ दीदी, आप उदास लग रही हैं। क्या सच में, लेकिन मैं उदास नहीं हूँ, बस थोड़ी थक गई हूँ, काम ज्यादा होता है ना इसलिए, दीवा ने मुस्कुराकर उसका गाल खींचते हुए कहा। अचानक चलते हुए इनाया रुक गई, उसने दीवा से सीरियस अंदाज में पूछा, ये सब रक्षित भैया की वजह से है ना। पिछले दिनों जो भी हो रहा था उसके बारे में इनाया को सब पता था। रक्षित ने दीवा को धोखा दिया था और अब उसे छोड़कर चला गया था। दीवा हमेशा से इनाया की फेवरेट रही थी और वो अपनी दीदी को इस तरह उदास नहीं देख सकती थी। दीवा ने बिना कुछ बोले उसकी बात पर सिर हिला दिया तो इनाया उसके पास जाकर चिपट गई। वो धीरे से बोली, कोई बात नहीं, मेरी दीदी दुनिया की बेस्ट इंसान है और वो घटिया इंसान उनके लायक नहीं था। देखना, आपको उससे भी अच्छा इंसान मिलेगा जो आपसे बहुत प्यार करेगा। दीवा ने हल्के से इनाया के माथे को चूम लिया और फिर वे दोनों फिर से चलने लगी। स्कूल पहुंचने के बाद इनाया ने दीवा से कहा, आज के लिए आई एम सॉरी दीदी, मेरी वजह से आपको और परेशान होना पड़ा। कोई बात नहीं इनाया, एक बात याद रखना, किसी को तुम्हारी इंसल्ट करने का हक नहीं है। तुमने जो भी किया वो सही था। तुम्हारे मॉम डैड ने जो भी गलती की थी उसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं थी। तुमने अपने लिए स्टैंड लिया और आई एम प्राउड ऑफ यू बेटा, दीवा ने प्यार से उसके गाल पर हाथ रखकर कहा। हाँ, मैंने जो किया वो सही था, पर क्लास टीचर ने भी बहुत हेल्प की। अच्छा हुआ ना जो आप उनको पहले से जानती थी। अच्छा दीदी, अब आपका ब्रेकअप हो गया है तो आप सिंगल हो गई हो, क्यों ना आप समय से के साथ बाहर टाइम स्पेंड करो, वो बहुत अच्छे हैं, उन्हें सब पसंद करते हैं, इनाया ने दीवा का मूड सही करने के लिए कहा। लगता है तुम्हें आज कुछ ज्यादा ही शरारतें सूझ रही हैं। चलो अपनी क्लास में जाओ और आगे से कोई बात हो तो अपने फेवरेट समय सर को कहना, दीवा ने कहा और इनाया को बाय बोलकर वहां से चली गई। दीवा ने देखा कि जब तक वो नहीं गई इनाया वहीं पर खड़ी उसे जाते हुए देख रही थी। उसकी इस हरकत ने उसे रक्षित की याद दिला दी थी। वो भी यही करता था, जब वो उससे मिलने आता था तब दीवा जब तक नहीं चली जाती वो वहीं पर खड़ा रहता था। दीवा को अचानक ही रक्षित के साथ बिताए हुए अच्छे मोमेंट्स याद आने लगे तो उसकी आंखें भर आई थी। उसने खुद को मजबूत करते हुए कहा, वो सब प्यार नहीं धोखा था, उसने तुम्हें इस्तेमाल किया था ताकि तुम्हारे पापा को बर्बाद कर सके। तुम्हें खुद को संभालना होगा दीवा।
दीवा उसके बाद हॉस्पिटल गई और फिर काम निपटाकर आर्यांश के विला पर पहुंची। वो घर पहुंची तब तक रात के 10 बज चुके थे। काम ज्यादा होने की वजह से उसे देर हो गई थी। जब दीवा घर पहुंची तब सुमन परेशानी में इधर उधर घूम रही थी। दीवा को देखते ही वो जल्दी से उसके पास आकर परेशान लहजे में बोली, मिस गोयंका, आप कहाँ रह गई थी? मिस्टर कपूर का बार बार कॉल आ रहा था और वो आपके बारे में पूछ रहे थे। ओह, मैंने ध्यान नहीं दिया होगा, तब उन्होंने आपको कॉल किया होगा, दीवा ने मायूसी से कहा। आप ऐसा कीजिए, उन्हें एक बार कॉल कर लीजिए, सुमन ने कहा। दीवा ने उनकी बात पर हामी भरी। उसका आर्यांश से बात करने का कोई मूड नहीं था, पर दूसरा कोई चारा भी नहीं था। आर्यांश अपनी बिजनेस ट्रिप पर गया था, फिर भी वो दीवा पर पूरी नज़र बनाए हुए था। इससे दीवा परेशान हो रही थी। वो कॉल करने के बजाय डाइनिंग टेबल पर बैठकर जूस पीने लगी। उसकी ये बेपरवाही देखकर सुमन उसके पास आकर बोली, आप प्लीज़ उन्हें कॉल कर लीजिए ना, कहीं ऐसा ना हो कि वो मुझे काम से निकाल दे। मजबूरी में ही सही, लेकिन दीवा को आर्यांश को कॉल करना ही पड़ा। एक रिंग में ही आर्यांश ने उसका कॉल उठा लिया था, मानो वो उसके फ़ोन कॉल के ही इंतज़ार में बैठा हो। इस वक्त आर्यांश अपने होटल की खिड़की के सामने खड़ा हुआ था। उसकी निगाहें सर्द थीं और उसने उसी गुस्से में पूछा, कहाँ थीं तुम अब तक और आज घर आने में देर कैसे हो गई? हॉस्पिटल से पता चला कि तुम काफ़ी देर तक गायब थीं। आर्यांश के सवाल जवाब फिर से चालू हो गए थे, जो दीवा को इरिटेट कर रहे थे। वो उसकी लाइफ को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था।